हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 20। ना प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियं, स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि वह शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता, यानी कि वो ये नहीं मानता है कि वह शरीर है, अभी तो वो समझता है कि वह चिन्मय आत्मा है। वह यह भली भांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को टुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। दोस्तों, थोड़ा समझाने का हम प्रयास करेंगे। पहली बात ये कि यहां पे उसे ऐसे व्यक्ति के लक्षण हैं जो कि मुक्त आत्मा है और इस जगत में कुछ स्वाद बेस्वाद अगर उसको प्राप्त होता है तो वो दुखी नहीं होता है। और इस बात को, सिद्धांत को भगवद गीता में कई बार रिपीट किया गया है, समझाया गया है। क्यों ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का जो मुक्तावस्था में है उसका जीवन शुष्क नहीं होता है, अपितु आध्यात्मिक पद की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल फोकस्ड, मतलब कि एकदम एक निष्ठ रहता है। उसकी चेतना बिल्कुल व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसकी चेतना बिल्कुल फोकस्ड रहती है। फोकस को क्या बोला जाएगा, आप समझते हैं फोकस का मतलब क्या होता है। उसकी चेतना बिल्कुल आविष्ट रहती है भगवान की चरणों की प्राप्ति करने में। इस जगत में अगर हमारे जो आकांक्षाएं हैं वो इस जगत की ही होंगी अगर, तो इस जगत में कुछ अगर होता है तो उससे हम बहुत प्रभावित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में बहुत महान व्यवसायी बनना चाहता है, ये भूल जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तो स्टॉक एक्सचेंज का गिरावना उठना उसको, उसकी चेतना को बहुत प्रभावित करेगा। तो अगर हम इस जगत के में ही कुछ महान बनना चाहते हैं तो अगर हम उस पद को प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत आसमान में, से कहते हैं आसमान में उड़ने लग जाएंगे, और अगर नहीं प्राप्त करेंगे तो स्वभावतः हम लोग डिप्रेशन इत्यादि का अनुभव करेंगे, जो कि हम समाज में बहुत देख रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी दिक्कत वाली ये है कि ये जगत ही पूरी तरह से शाश्वत है और इस जगत की हर वस्तु शाश्वत है। तो इस जगत में अगर हम कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं तो वो बहुत समय तक हमारे साथ नहीं रहता और अंततोगत्वा मृत्यु के समय हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति शाश्वत जगत के शाश्वत जीवन को अपना ध्येय बनाया हुआ है, अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, वो इस जगत की वस्तुओं को बहुत अधिक महत्व नहीं देगा। तो साम्य में स्थित होने का फायदा ये है कि व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य से के प्रति बिल्कुल उसका ध्यान एकदम फोकस्ड रहेगा। इस जगत की वस्तुओं के या जगत की घटनाओं से वो अपने लक्ष्य से अच्युत नहीं होगा, उसका ध्यान अलग नहीं जाएगा। तो ये ऐसा करते कैसे हैं, तो ये इस बात को भगवान गीता में बताते हैं, श्लोक में बता रहे हैं, स्थिर बुद्धि के द्वारा। जो व्यक्ति मूर्ख है वो मोहित हो जाता है, वो सोचता है अरे ये बहुत अच्छा है, मैं वहां जाऊंगा, अरे वो बहुत अच्छा है, मैं वहां जाऊंगा, वहां अच्छा भोग मिल रहा है, वहां अच्छा भोग मिल रहा है, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, बल्कि बुद्धि ये प्लानिंग करती रहेगी कि कैसे मैं अगला भोग प्राप्त करूं और भोग के द्वारा शायद मैं सुखी हो जाऊंगा। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यदि हमको जल चाहिए तो हमें एक ही जगह बोरिंग करनी होती है और गहरी बोरिंग करनी होती है, गहरा कुआं खोदना होता है। जगह जगह कुआं खोदने से हमें पानी नहीं मिलता, तो सही जगह खोदने से और गहरा खोदने से हमको जल मिल जाएगा। ऐसे ही अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अलग अलग योग पद्धति पालन कर रहे हैं, तो हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुख प्राप्ति का जो उपाय है वो भागवत में स्पष्ट बताया गया है, अहेतुकी अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धति। जिस जिस धर्म के आचरण से, परधर्म के आचरण से व्यक्ति की भगवान वासुदेव में निष्काम और लगातार होने वाली भक्ति जागृत हो जाए, उसी से आत्मा को सुख प्राप्त होगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए, उस अहेतु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम लोग साधना भक्ति का आश्रय लेते हैं, साधना भक्ति करते हैं और इसी में अपनी बुद्धि को लगाए रखते हैं। अपनी साधना में ही व्यक्ति अपना जीवन यापन करना चाहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, फिर भी उसका उद्देश्य साधना ही होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का पालन केवल इसलिए करना चाहिए ताकि व्यक्ति साधना को कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके द्वारा अगर ऐसी बुद्धि हमारी रहती है कि मुझे जीवन में कृष्ण की प्राप्ति करनी है और साधना, भगवान का नाम जप करना, भक्ति करना, भगवद गीता पढ़ना, प्रचार करना, जो भी भगवान के संबंधित सेवाएं हैं, यही मेरे मुख्य कार्य हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिर जगत की घटनाओं से प्रभावित नहीं होगा। और ये मोह होता कैसे है, इससे पहले भी भगवद गीता में हमने सुना था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो बुद्धि तुरंत मोहित नहीं होती है, सबसे पहले मन हमारा मोहित हो जाता है और वो होता है भोगों के विचारों में ध्यान करते रहना, और इसके द्वारा व्यक्ति की अपनी स्मृति का नाश हो जाता है, जिसमें वो भूल जाता है कि वो है कौन, वो एक चिन्मय आत्मा है, वो भूल जाता है इस बात को। तो इसलिए सबसे पहले अपने मन को हमें फोकस करने का प्रयास करना चाहिए, अन्य जगहों से हटा करके भगवान के चरणों में लगाए रखना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना इस प्रकार से भगवान में स्थित है, तो वो ब्रह्म को जानता है और वही व्यक्ति ब्रह्म को में स्थित भी है। जैसे कि एक व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला है और वो रास्ते में कहीं जा रहा है और 5 रुपए उसके गिर जाते हैं और किसी भिखारी को मिल जाते हैं, तो भिखारी बहुत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वो जो करोड़पति है उसके लिए कोई मतलब भी नहीं, उसे याद भी नहीं रहेगा कि 5 रुपए गिरे या नहीं गिरे, और उसके लिए वो बहुत चिंता नहीं करेगा। लेकिन वो जो भिखारी है, अगर उसके जो 5 रुपये उसे प्राप्त हुए हैं तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, और अगर कहीं गलती से 5 रुपये गिर गए और दूसरे भिखारी को मिल गए तो उसके लिए वो युद्ध करने लगेगा। तो आप उदाहरण से समझ पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझता है कि वो शरीर नहीं है, भगवान का अंश है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं, तो वो व्यक्ति अपने और अगर इस स्थिति में वो स्थित भी हो, एक बात है जानना कि मैं कृष्ण का अंश हूं, और दूसरा उसका अनुभव भी करने लग जाए, तो फिर व्यक्ति आध्यात्मिक सुख का अनुभव करने लग जाएगा, तो भौतिक सुख के जो आना जाना है उससे वो प्रभावित नहीं होगा। जिस प्रकार से 1 करोड़पति 5 रुपए के लाभ से और हानि से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भक्त हैं उन ऐसा नहीं है कि उनकी संवेदनाएं नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, अपितु उनने अपनी इच्छा को या अपने ध्यान को भौतिक वस्तुओं में नहीं लगाते हैं, नहीं लगा करके उनको उच्चतर वस्तुओं में या उच्चतर विषयों में लगाते हैं, और वो है विषय भगवान श्री कृष्ण का। तो ये जो श्लोक है ये एक ऐसे व्यक्ति को भी के बारे में बताता है जो भक्ति में प्रवीण हो चुके हैं, और इस एक साधक के बारे में भी बताता है कि उसे भक्ति कैसे करना चाहिए, यानी कि साधना कैसे करनी है, और जो व्यक्ति साधक को प्राप्त हो गया उसकी क्या स्थिति है, दोनों को ही समझाता है। साधक को प्रयास करना चाहिए कि भोग की तरफ से ध्यान हटा करके भगवान की तरफ ध्यान लगा कर रखे, और जो 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 एक व्यक्ति साध्य अवस्था को प्राप्त कर गया है वो स्वतः ही उसका ध्यान भोगों में नहीं जाता, अपितु ध्यान उसका हमेशा भगवान की चरणों में लगा रहता है। तो इस प्रकार से उसकी चेतना स्थिर रहती है भगवान के चरणों में। हरे कृष्णा।